Aí. Para teclas key. E caprend. ६७ की मुरली है। आज तारीख 16 फरवरी 2018 मुरली का पेज नंबर है 3 मध्य। इस मुरली का गीत था, ये लड़ाई है दिए और तूफान की। बताया यह आत्मा है दीवा और उस दीवी को या कहें बर्ब को करंट मिलती है बड़े जॉन्स। तो बहुत करंट कहां होती है तो देख सकते हैं नहीं है, परंतु अभी जो बच्चों को समझाना चाहिए बाहर वालों को दुनिया वालों को, जैसे ये बच्ची बैठी है तो ये समझती है कि हम सबको समझा रहे। अच्छा हाँ, सबको भी समझना चाहिए। उनको क्या समझाना चाहिए? किसने कहा आत्माओं के बाप ने कहा? किस बच्ची की ओर इशारा किया? जो बच्ची ब्रह्मा के तन के सामने बैठी है, समझती है कि सबको समझा रहे। सबको माने चेतनों को, बाबा तो दुनिया वालों को ही बात कर रहे हैं, दुनिया वालों को समझाना चाहिए बाहर वालों को। तो जरूर वो बच्ची विश्व आत्माओं का या विश्व धर्मों की सभी आत्माओं की मां होगी। जगदम्बा होगी, लेकिन जगदम्बा का चित्त देखने से भक्त लोग समझते हैं कि कोई देह है, तो बाहर से देखने में आती है। देह एक चीज और उसमें देह को चलाने वाली आत्मा दूसरी चीज, वो तो नहीं दिखाई पड़ती है। तो जगत की अम्बा है तो सारे जगत को समझाने वाली होगी ना, सभी बच्चों को समझाएगी, लेकिन समझाएगी तो आत्मा ना, जड़ घड़ी थोड़े समझाएगी। तो बच्ची सामने बैठी है, और समझती है कि हम सबको समझा रहे, 500-700 करोड़ को भी समझा रहे। अच्छा हाँ, सबको भी समझाना चाहिए। क्या समझाना चाहिए? कि तुम जो आत्माएं हो 500-700 करोड़ 750 करोड़ सोल्स हो, आत्मा को सोल्स भी तो कहते हैं ना बाहर में दुनिया में, क्योंकि दुनिया में तो अंग्रेजी ही चल रही है। तो वो आते हैं तो जब यहां आकर के ऊंची स्टेज में ऊपर बैठे बाकी आदमी, तभी तो प्योर हूं, और करंट है तुम्हारे में, किसने बोला? शिव बाप जो अखूत ज्ञान का सागर है उसने बोला। किससे बोला? जो विश्व में विश्व मनुष्य आत्मा, विश्व की मनुष्य आत्माओं का बाप है, सारी मनुष्य सृष्टि का बाप, एडम आदम आदिदेव शंकर कहा जाता है, उससे बोला। वो बड़ी मशीनरी है ना, करंट देने वाली। तो बोला ये सबसे ऊपर है, और वो करंट है तुम्हारे में, माने जिस एडम आदम से बात कर रहे हैं उससे कहा तुम्हारे में ये करंट है, और सतो प्रधान हो, गोल्डन एज में हो, और प्योर सोल हो, और फिर जो प्योर सोल है उसको इम्प्योर भी बनना है जरूर, क्योंकि तो शूटिंग चल रही है ना, रिहर्सल का है ना, चार युगों का ड्रामा है, चार सीन वाला, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। तो जरूर तमो प्रधान कलयुग के अंत में आएंगे, और सतयुग के आगे में आएंगे। कलयुग के अंत में आएंगे आत्माओं का बाप, और आत्माओं का बाप जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं वो संपन्न बन करके आएगा सतयुग आदि में, जिसे कहे संगम की स्वर्ण सतयुग। तो दोनों युगों का मेल हो गया संगम, कलयुग का अंत और सतयुग का आदि। इस संगम में शूटिंग होती है, और डायरेक्टर कौन है? डायरेक्टर है परमपिता शिव, जो सदैव पर्दे के अंदर रहता है, कभी किसी को दिखाई नहीं देता, उसको पहले पहले देखने वाला बैटरी है या जनरेटर कहो, मशीन बड़ा मशीनर वो है, डांट कहा जाता है। तो वो डांट से करंट लेनी है 500-700 करोड़ 750 करोड़ मनुष्य आत्माओं को, वो सोल्स नंबर वन चार युगों में आती है, कोई सत्युग में, कोई त्रेता में, कोई द्वापर में, कोई कलयुग अंत में भी आती है। तो जब से भी आती है पार्ट बजाती है तो चार अवस्थाओं से पसार जरूर होती है, सत्ययुग त्रेता द्वापर कलयुग का मतलब भी है। हर आत्मा के जीवन में चाहे अंत में आने वाली क्यों न हो, सतो प्रधान सतो सामान्य रजो और तमो चार अवस्थाओं से पसार होना पड़ता है। तो जैसे आत्मा रूपी दीवा तमो प्रधान होने पर पुण्यानी ज्योति वाला हो जाता है, इम्प्योर आत्मा हो जाती है। तो जो भी प्योर सोल हैं उनको इम्प्योर भी बनना जरूरी है, चाहे वो अव्वल नंबर का डांट ही क्यों ना हो, बड़ा बैटरा बड़ा मशीनरी, वो भी जब इम्प्योर बनती है तभी तो गॉडफादर को बुलाते हो ना कि आ करके हमको लिबरेट करो, छुड़ाओ इस देह अभिमान के बंधन से, छुड़ाओ। अभी लिबरेट का अर्थ अलग होता है, हमको पावन बनाओ, जैसे एक पवित्र सोना होता है प्योर सोना 24 कैरेट, उसमें चांदी की तांबे की लोहे की खाद पड़ जाती है तो इम्प्योर हो गया ना, अपवित्र हो गया ना। तो सत्युग से लेकर जो सोने का युग कहा जाता है, त्रेता में आत्मा जन्म लेते लेते आती है, सुख भोगते भोगते इंद्रियों के संग के रंग में आते आते ऊपर से जो आत्माएं आती हैं वो चांदी जैसी आत्माएं आती हैं, उनके संग के रंग में आकर के चांदी जैसी हो जाती है। फिर द्वापर में उतरते हैं, ऊपर से भी उतरते हैं और पीछे वाले भी जन्म लेते रहते हैं, जनसंख्या बढ़ती रहती है, संघ के रंग में आते रहते हैं तो तांदी की खाद पड़ जाती है आत्माओं में। फिर कलयुग में आते हैं तो ऊपर से आने वाली आत्माएं भी ढेर की ढेर आती हैं और पीछे से जन्म लेने वाले भी जन्म लेते रहते हैं, ये 84 का चक्कर है ना। तो इस चक्र में पार्ट बजाने आना तो सभी को है इस सच्ची रूपी रंगमंच पर, लेकिन खाद मिक्स होती जाती है, कभी कोई लोहे की खाद, लोहे जैसी काली तमो प्रधान आत्मा राक्षसी पार्ट बजाने वाली, उनके संग के रंग में आना पड़ता है। तो देवान बढ़ता रहता है, जो आत्मा सोना थी वो अपवित्र होती जाती है, खाद वाली बनती जाती है। तो दुख बढ़ता है। तो आत्मा कहती है हमको पावन बनाओ, जो कहते हैं हमको पावन बनाओ वो आत्माएं अलग होती है, सब नहीं कहती है हे पतित पावन आओ। जो कहते हैं पतित पावन आओ, बुलाते हैं, वो ही पतित से पावन बनते हैं। जो बुलाते नहीं हे पतित पावन आओ, वो पावन भी नहीं बनते हैं। तो लिबरेट माना कोई दुख से लिबरेट करो, दुख से छुड़ाओ। दुख होता ही है देह अभिमान से, देहभान आता ही है द्वापर युग से, द्वैतवादी युग है ना, दैत्यों का द्वापर और कलयुग है, ये दैत्यों का युग है, राक्षसों का, राक्षसी दुनिया है, तो बताइए। तो आत्मा कहती है दुख से लिबरेट करो, पावन बनने का अर्थ अलग है, हमको पावन बनाओ पतित से, अर्थात आत्मा जो सत्युग में सोने जैसी थी वो लोहे जैसी काली बन गई। तो जरूर जो पतित बने हैं कोई से, क्योंकि सत्युग आदमी तो बहुत थोड़े होते हैं, फिर आत्मलोक से सुप्रीम है बोध से, मुसलमानों से कहते हैं अर्श, हिंदू लोग कहते हैं ब्रह्मलोक, परमधाम से आत्माएं आती रहती है इस सृष्टि रूपी रंग मंच पर, दुनिया की जनसंख्या बढ़ती रहती है सत्यु से, त्रेता की आबादी ज्यादा त्रेता से, द्वापर की आबादी ज्यादा द्वापर से कलयुग की आबादी ज्यादा। तो जो जो आबादी बढ़ती जाती है आत्माओं का जखीरा बढ़ता जाता है, तो अनेकों के संग के रंग में आकर के जो आदि में सतयुग में पावन आत्माएं थी वो अच्छी खासी पतित बन जाती है, दुखी हो जाती है। तो कहते हैं दुख से लिबरेट करो, और ये दुख आता ही है देह अभिमान से, ज्यादा आता है देह अभिमान होता है द्वापर से, क्योंकि सतयुग त्रेता में तो आत्मा अभिमानी होते हैं, अपन को आत्मा समझते हैं, वहां आत्मा का दीपक जगा हुआ रहता है, भले थोड़ी थोड़ी ज्योति कम होती है, इसलिए कहते हैं सतयुग में 16 कला संपूर्ण, त्रेता में 14 कला संपूर्ण आदि में, और त्रेता के अंत द्वापर के आदि में 8 कला। तो पावन बनने का अर्थ अलग है, हमको पावन बनाओ पतित से, माना कलयुग के अंत में सभी आत्माएं पतित बन जाती हैं, तो तामसी बन जाती है, लोहे जैसी, आयरन एज। तो जरूर जब पतित बने हैं कोई से, माने कोई न कोई के संग के रंग में आए तो पतित बने, जिससे हमको लिबरेट भी करो, जिनके साथ पतित बने हैं हम वो सहज तो नहीं छोड़ेंगे, बैठेंगे एक की याद में, जो ऊंचते ऊंचे भगवंत है आत्माओं का बाप, जिसका किसी से कभी भी इस दुनिया में अटैचमेंट होता ही नहीं। इस दुनिया में आता भी है, मुकर रथ में भी आता है, एकदम तमो प्रधान रथ में आता है, फिर भी अटैचमेंट ही नहीं होता। तो उसको जब आत्माएं याद करने बैठती हैं, तो वो याद ही नहीं आता। जिनका संग तारंग लिया है इस दुनिया में आत्माओं ने, वो ही याद आने लगती है। तो कहते हैं जिनसे हम पतित बने हैं संग के रंग से, उनसे हमको लिबरेट भी करो और तारंग भी बनाओ, हमको छोड़ाओ भी, इनके अटैचमेंट से हमें छोड़ा। तो ये तो अभी बात बैठ करके तुम्हारे से रूहे अंत करते हैं, रूहानी बाप है ना। तो ये रूहानी बाप खड़े होके नहीं, इस मुकर्रर रथ में बैठ करके तुमसे रूहे अंत करते हैं और तुम्हें ही सुनते हो। क्या रूहान की, रूहानी बाप की बातें जो त्रिकालदर्शी है, अखूट त्रिकालदर्शी है, उसकी बातें तुम ही सुनते हो और तुम ही समझते हो कि बरोबर तुमको आए करके ये जो रावण का राज्य है, यहाँ रावण माना ही दस तरह की बातें बनाने वाला, दस सिरों वाला, दस तरह के वाइब्रेशन छोड़ने वाला, दस तरह की कहना सिखाने वाला, शैतान का राज्य है, दस धर्म पिता है ना, नंबर वन। तो कलयुग के अंत में ही होते हैं, इसीलिए तो गीता में कहा है सर्वधर्मान परित्यज्य, सात धर्मों को छोड़ दो, अर्थात इन सभी देहधारी धर्म पिताओं को छोड़ दो, ए टू जेड सात तमो प्रधान बन गए संघ के रंग में आते आते, एडम से लेकर के और जो नास्तिक बन पड़े हैं कलयुग के अंत तक, लेनिन स्टालिन जैसे, जो राजाइयों और राजाओं की राजाइयों को भी खत्म कर देते हैं, उन सबका राज्य से दुनिया में चल रहा है संगठित रूप से। तो अब ये शैतानों का राज्य, बच्ची कहते भी हैं, समझते भी हैं कि इस समय शैतान का राज्य है, हिंदुओं में शैतान रावण को कहा जाता है, सारी इंद्रियों से शैतानी करता रहता है, वो सृष्टि पर है विभिचार रावण राज्य। इसलिए कहते हैं कि हमको आकर के लिबरेट करो इस रावण से, शैतान से। तो शैतान से लिबरेट करके कहां ले जाओ, इस दुनिया में तो इस रावण का राज्य है, दस सिरों वाले का, दस धर्म पिताओं वाली दुनिया है, उनके फॉलोअर्स की दुनिया है, तो इन सब से छुड़ाकर कहां ले जाओ। ये भी विचारों को इतना समझ में नहीं आता है कि कहां ले जाओ। वो बेचारे कौन जो स्वर्ग में आते ही नहीं है, आते ही है वो धर्म पिता है द्वैतवादी, द्वापर युग से जहां दो दो धर्म फैलाते हैं, दो दो राज्य बन जाते हैं, दो दो मते हैं, दो से चार, चार से आठ, भाषाएं भी बढ़ती चली जाती, तो खूब झगड़ते हैं आपस में, क्योंकि मतभेद बढ़ता जाता है ना, तो उन विचारों को ये पता ही नहीं आता, इतना समझ में नहीं आता है कि ये स्वर्ग क्या है। ये तो जरूर समझते हैं कि यहां से लेकर के हमको घर ले चलो, माना जो सुप्रीम है वो सोल वर्ल्ड है, जिसे मुसलमान भी कहते हैं अर्श है, मैं खुदा रहता है। तो ये खुदा जो तुम खुदा आते हो हमको लिबरेट करने के लिए इस दुनिया से, दुख की दुनिया से, हमको उस दुनिया में ले चलो जहाँ ये शैतानों पर आके रहो, ये सब आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के पाप के घर में रहे। ये आत्मिक स्थिति क्या होती है? आत्मिक स्थिति माने देह से परे, देह की इंद्रियों से परे, देह के पदार्थों, देह के संबंधों से परे, एकदम ज्योति बिंदु, निसंकल्प, कोई भी संकल्प नहीं, सिर्फ बिंदु, जैसा बाप वैसे बच्चे बिंदु, बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप, 500, 700, 750 करोड़ बिंदु बिंदु मनुष्य आत्माओं का बाप, ज्योति बिंदु शिव, सुप्रीम गॉड फादर, जिसे मुसलमान कहते हैं खुदा, वो खुद ही आता है, जैसे मुसलमान बुलाते हैं अल्लाह, पांच पांच बार दिन में बुलाते हैं, जोर से चिल्लाते, बेचारे जानते ही नहीं, तुम्हारे बुलाने से नहीं आएगा, वो तो खुद ही आता है, इसलिए उसका नाम है खुदा। तो इतना जरूर समझते हैं कि इस दुनिया से लेकर के, दुख की दुनिया से लेकर के हमको घर ले चलो, सुप्रीम एबोड अर्श में, सोम वर्ल्ड में ले चलो, आत्मलोक में ले चलो, शांति धाम, यही साइलेंस का हमको वर दो, वरदान दो कि हमें शांति मिल जाए, तो हम शांति की दुनिया में रहें। वो जो द्वैतवादी द्वापर युग से धर्म पिता आते हैं देवहिमानी और उनके फॉलोअर्स और उन धर्मों में कन्वर्ट होने वाले भारतवासी देवात्माएं, सब शांति चाहते हैं, लेकिन ये द्वैतवादी जो द्वापर युग से संसार में आते हैं वो तो स्वर्ग देखते ही नहीं, असली स्वर्ग क्या होता है उनको, तो बस क्षण थोड़े समय का, एक जन्म का सुख मिलता है, एक जन्म की जीवन मुक्ति बस, और वो भी कलाओं में बंधी हुई, तो वो शांति चाहते हैं, क्योंकि कलयुग में तो जब एटम बमों की मार चलती है तो बड़ी दुनिया में अशांति हो जाती है, समझते हैं हाय मरे कि मरे, पता नहीं कब हमारे ऊपर बम गिरे, बहुत अशांत हो जाते हैं। तो फिर शांति धाम में ले जाने के लिए बोलते हैं, वहां शांति भी है, उन्हें शांति ही चाहिए, जो द्वैतवादी द्वापर युग से आत्माएं शांति धाम से आती है, क्योंकि एक राज्य जब तक है तब तक शांति, वो एक राज्य तो रहता है, एक बाप का स्थापन किया हुआ, एक हेवनली गॉड फादर का स्थापन किया हुआ राज्य तब तक रहता है जब तक द्वैतवादी ये देह अभिमानी धर्म पिताएं सृष्टि पर नहीं आते। पहला पहला देह अभिमानी धर्म पिता इब्राहिम आता है तो दूसरा धर्म स्थापन करता है, इस्लाम धर्म, तो दो धर्म हो गए, तो आपस में धर्म पिताओं की उस दुनिया में झगड़ा तो जरूर हो, द्वैतवाद में झगड़ा होता ही, दो होंगे दो बर्तन होंगे तो आवाज करें, तो शांति एक बाप के घर में है, जिसे कहते हैं सोल वर्ल्ड, या कहते हैं उस हेवनली गॉड फादर का स्थापन किया हुआ सत्युग त्रेता युग की देवताओं की दुनिया। तो जब तक उन देवताओं का राज्य है तब तक शांति है, अर्थात घर में कोई भी हंगामा नहीं होता है। ये भगवान का बनाया हुआ घर है ना, हेवन। क्यों नाम रखा है हेवन? विन किया हुआ है। किसने विन किया? देवात्माओं ने विन किया, जो संसार को देने वाली है, देने की इच्छा रखती है, कुछ लेने की इच्छा नहीं रखती, इसलिए उनको देव कहा जाता है। उनका मुखिया कौन है? महादेव, जिसको कहते हैं देवदेव, महादेव, ब्रह्मादेव, जनरेटर, विष्णुदेव, ऑपरेटर, शंकर देव, महादेव, डिस्ट्रक्टर। तो जी ओ डी कहा जाता है गॉड। तो उस गॉड के घर में हंगामे की कोई बात ही नहीं। एक बाप है ना, एक बाप का राज्य, एक बाप के सब बच्चे देवता हैं, बच्चे बच्चे वगैरह हैं, सब शांत और सुखी रहते हैं, अशांत नहीं करते हैं, ना तन शांत करते हैं ना अशांत होते हैं, आत्मा की स्थिति में रहते हैं। अपन को देह नहीं समझते ना, मैं ज्योति बिंदु आत्मा बाहर। ये मनुष्य जो यहाँ तंग होते हैं, ये अशांति से होते हैं, देवान से अशांति आती है कि हम देह हैं। देह पांच तत्वों से बनती है ना, पंचभूत कहा जाता है। तो ये भौतिक दुनिया है देह को प्रेफरेंस देने वाली, लड़ाई झगड़े वाली दुनिया, ये लड़ाई, ये झगड़ा, ये घर घर में होता है, घर घर में मारा मारी, वाइब्रेशन की मारा मारी, संकल्पों की मारा मारी, वाचा की मारा मारी, कर्मेंद्रियों से मारा मारी। तो ये कलयुग के अंत में बच्चों से, आत्मा रूपी बच्चों से कितनी अशांति होती है। तुम तो जानते हो ना, तुमको जो सामने बैठते हैं उनको तुम कहा जाता है, कोई बिल्कुल सामने बैठते हैं, कोई आगे बाजू बैठते हैं, कोई पीछे बैठते हैं। तो बिल्कुल जो सामने है उसको इमर्ज करके ब्रह्मा के तन में आया हुआ शिव बोलता है कि तुम तो जानते हो ना, क्योंकि सबसे जास्ती ज्ञान तुम्हारे में आता है, मैं तुम्हारे में मुकर्रर रूप से प्रवेश करता हूं, तो तुमको तो खास जानकारी देता हूं। तुम वेद की जनता पार्टी के मुखिया जयप्रकाश नारायण हो गए ना, तो देखो यहां बहुत आते हैं बाप के पास, जिनका झगड़ा घर में बहुत होता है और बहुत अशांत रहते हैं। अगर अभी दो का झगड़ा भी होता है, समझो स्त्री पुरुष का झगड़ा है, तो माता स्त्री भी तंग है, बाप पुरुष भी तंग है, बच्चे भी तंग होते हैं, तो उनके लिए फिर बहन भाई काका चाचा मामा सभी तंग हो जाते हैं। क्योंकि मनुष्य जो अशांत होती है ना, वो जहां भी जाएंगे वहां शांति फैलाएंगे। बाप के घर में भी जाएंगे, नाना मामा चाचा काका ताऊ ढेर ढेर संबंधी होते हैं ना, बच्चों से यहाँ बच्चियों से मिलने आते हैं तो कितनी अशांति फैलाते हैं। अभी बहुत तो हुई अशांति, शरीर से जड़ है तो तभी अशांति है। ये आसुरी स्वभाव जिसको कहा जाता है, बाकी तुम बच्चे तो जान गए हो कि हम आते रहे जहां सुप्रीम है वो शांति धाम में रहती है, वो तो है ही शांति धाम, वहां तो शांति ही शांति लगी पड़ी है, बाप का घर है ना, परमानेंट घर है बाप का। बाकी इस दुनिया में शिव बाप आकर जो सुखधाम रचते हैं वहां भी शांति है। अच्छा तो फिर जब सत्य होता है तो उसको भी शांति धाम कहा जाता है, तो उनको फिर सुखदान कहते हैं, जिस सुखदान में शांति भी बनी पड़ी है। तीन नाम है ना, शुद्ध शांति धाम बाप का परमानेंट घर, फिर है सुखधाम। 21 जन्मों तक तुम सुख में ही रहते हो, आधा कल सतयुग और त्रेता। बेहद ड्रामा के दो पहले सीन है, सुख ही सुख, दुख का नाम निशान नहीं। तो जब ये सभी देवात्माएं सुप्रीम लोगों से यहाँ सतयुग त्रेता में आकर के जन्म ले लेती हैं, आ जाते हैं, तो प्योरिटी ही प्योरिटी है, पीस ही पीस, प्रॉस्पेरिटी ही प्रॉस्पेरिटी, तो वहां सुख है, उसको पाई जाता है शांति नाम, सुख नाम स्वर्ग, क्यों सुख का नाम कहा जाता है, क्योंकि सुख का घर है, स्वर्ग है, स्वर्ग दो शब्दों से, स्व माने आत्मा, ग माने गई, आत्मा कहां गई, स्वयं स्थिति में गई। तो जब आत्मा स्वयं स्थिति में जाती है सदाकाल के लिए तो स्वर्ग बन जाता है। स्वर्ग का मतलब ये है भाई सुख और शांति, क्योंकि वहां सुख नहीं जाएंगे, शांति धाम में स्वर्ग में सुप्रीम बाप के घर में शांति धाम है, परमानेंट शांति, वो है शांति धाम, स्वीट होम, उसको कहा जाता है स्वीट शांति धाम, स्वीट सुप्रीम एबोव, जिसका दूसरा अक्षर में मुक्ति कहा जाता है, इस संसार से मुक्ति। मोक्ष नहीं कहेंगे, क्योंकि आत्मा का सदाकाल के लिए मोक्ष तो हो ही नहीं सकता। जब गॉड फादर को भगवान को ही इस दुनिया में आना पड़ता है, हिंदू लोग तो कहते हैं कल्प कल्प लग प्रभु अवतार, कल्प कहते हैं चार युगों के मिल को, चतुर्युग को, तो हर चतुर्युग में भगवान को आना पड़ता है आत्माओं को उद्धार करने के लिए, मुक्ति देने के लिए।
तो मुक्ति कहा जाता है छुटकारे को, उसको मोक्ष नहीं कहेंगे कि आत्मा सदैव के लिए मोक्ष हो जाए। मोक्ष की हो गई तो फिर उनका कोई वर्ण भी नहीं हो सकता। दूसरी बात, आत्मा मोक्ष को प्राप्त कर ले तो फिर तो विनाशी होगी। आत्मा तो अविनाशी है, विनाशी और अविनाशी की बात इस संसार के लिए है। इस संसार में जो आता है आत्माएं आत्मिक रूप में आती हैं, तो बंधन में आ जाती है, सुख के बंधन में आती है पहले, फिर धीरे धीरे दुख के बंधन में आती है, संग के रंग में आते आते तो बंधन हो जाता है। उसको मोक्ष नहीं हो सकता क्योंकि आत्मा तो अविनाशी है। जो मोक्ष हो गया उनका वर्णन, इनके वर्णन होते हैं ना कि सुख में आया हुआ है, फिर दुख में आ गया है, फिर दुख में जाते हैं, फिर सुख में आते हैं। कि बाहर वाले कोई भी हो में जो इस धर्म के नहीं है, उनको सिर्फ इतना ही समझाना होता है कि तुमको मुक्ति चाहिए। बाहर वाले क्यों कहा? क्योंकि तुम बच्चे यहाँ बाप के पास घर में बैठे हो, तुम अंदर वाले हो गए, बाकी जो सुनते ही नहीं है, आते भी है तो एक बार आए फिर मारे दे घन के वापस चले गए, कभी आए ही नहीं लौट के। तो उनको सिर्फ, वो बाहर वाले हैं ना, उनको सिर्फ इतना समझाना होता है कि तुमको मुक्ति चाहिए ना, इस अशांति से मुक्ति चाहिए, वापस जाना है, इस देवघर से छूटना चाहते हो, क्योंकि मुक्त हो जाओगे तो पीछे बाद में जीवन मुक्ति तुम्हें जरूर मिलेगी। ऐसे नहीं कि सदाकाल के लिए तुम्हारी मोक्ष हो जाए, मुक्ति हो जाए, नहीं, तुम तो अविनाशी आत्मा हो, तो मुक्ति चाहिए, वापस जाना है, क्योंकि मुक्ति के पीछे जरूर फिर जीवन मुक्ति में वापस जाना पड़े। परंतु वो जब फिर यहाँ आवे तब फिर उसको जीवन मुक्ति कहें, इस संसार में आवेंगे ही नहीं तो जीवन कैसे धारण करेंगे, जीव आत्मा कैसे बनेंगे? शरीर आत्मा धारण करे तभी तो जीव आत्मा कही गए, क्योंकि पहले पहले जो आएंगे तो जीवन मुक्त तो जरूर होंगे, क्योंकि बाप के घर से आए। पहले पहले जो आएंगे वो जीवन मुक्त में, और पीछे आते हैं तो उनको थोड़ा जीवन बंद ज्यादा अनुभव होता है अंत में, लेकिन पहले आने वालों को भी जीवन बंद में आना पड़ता है, क्योंकि हाफ एंड हाफ होता है ना। सामान्य रूप से सभी आत्माओं को आधा सुख आधा दुख है, सबके लिए इतना तो है ही, आत्माओं के लिए भी हाफ एंड हाफ है, ये सृष्टि के लिए भी हाफ एंड हाफ है। सत्युग त्रेता सुख और कलयुग द्वापर में दुख, तो हाफ एंड हाफ हुआ ना। तो पीछे जो आते हैं वो देरी देरी से आते रहते हैं, तो फिर वो हाफ तो नहीं हो सकता है ना। फिर भी इतनी ही सुख और शांति जितनी सत्युग में होती है इतनी ही तो उनको नहीं मिल सकती है। बाकी ये तो जरूर है कि सतो प्रधान सो सतो जरूर होने का है, सतो से रजो जरूर होना है, रजो से तमो प्रधान होना है। फोर गेट से पास जरूर होते हैं। बाबा ने समझाया ना, पिछाड़ी में जो अभी आते होंगे वो क्या आते होंगे, बिचारी एक जन्म लेते होंगे कलयुग के अंत में, आधा जन्म लेते होंगे, वो क्या सुख और दुख का अनुभव करेंगे। जैसे दीपावली में पतंगे रात को जन्म लेते हैं, सवेरे को खलास। अब ये तो सारा ड्रामा है बेहद का, सुख और दुख का अनुभव सिर्फ तुम ब्राह्मण करते हो। जो सृष्टि रूपी रंगमंच पर पहले आते हो, जानते हो कि हम इतने इतने जन्म लेते हैं सुख में, इतना जन्म फिर दुख में लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा 21 जन्म सुख में लेते हैं, 63 जन्म दुख में लेते हैं द्वापर कलयुग में। और तुमको अभी नारी में मिली है, सबके सुख और दुख की नारी मिली है। सब धर्म वाले और सब उनके फॉलोअर्स कौन कितना सुख लेते हैं, कौन कितना दुख लेते हैं, हरेक नेशन के, हरेक धर्मखंड के कितना सुख लेते हैं, कितना दुख लेते हैं, ये सारी मानस तुम बच्चों को बाप ने दिए। क्योंकि जानते हो कि ये फलाना धर्म फलाने समय में स्थापन होता है, जैसे सतयुग में सूर्यवंशी, त्रेता में चंद्रवंशी, फिर द्वैतवादी कलयुग द्वापर में इस्लाम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, बौद्ध धर्म, फिर द्वापर के अंत और कलयुग के आदि में शंकराचार्य का संन्यास धर्म। मोहम्मद आए उसी 100 वर्ष के आदि आगे पीछे, तो मुस्लिम धर्म स्थापन होता है। फिर आज से 400-500 वर्ष पहले गुरु नानक आए, सिख धर्म स्थापन हुआ। ये 9 धर्म तो ऐसे हैं जो नंबर वार कुछ न कुछ हेवनली गॉड फादर को मानते हैं, बाकी इनके बाद आने वाले मठपंत हैं, धर्म भी नहीं कहेंगे। जैसे आर्य समाज है, कबीर पंथ है, फलाना फलाना, अंत में आते हैं नास्तिक जो आर्य समाजियों से निकलते हैं, क्योंकि हर धर्म में 2 फाड़े तो हो ही जाते हैं, आर्य समाज में भी 2 फाड़े हो जाते हैं, उन्हें कहते हैं कम्युनिस्ट, भारतीय कम्युनिस्ट, फिर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट। तो तुम जानते हो कि फलाने फलाने धर्म में, फलाने फलाने धर्मखंड में कितना कितना सुख और कितना कितना दुख होता है, और किस समय ये स्थापन होते। तो नई दुनिया में तो नहीं होंगे ना ये सब धर्म, भाई उनका नया खंड होता है धर्म खंड, तो उनके लिए जैसे वो नई दुनिया हो गई। क्योंकि ये भी समझते हैं ना, अभी बौद्ध खंड चीन जापान तिब्बत वगैरह ये नया खंड हो, क्रिश्चियन खंड भाई ये नया खंड, यूरोप खंड, फिर बाद में अमेरिका खंड, तो नया हुआ ना ये अमेरिका। आज से 500-600 वर्ष पहले इजाद हुआ ना, मनुष्यों के दिमाग में आया कि अमेरिका भी कोई धर्म खंड है, कोई खंड है, कोई महाद्वीप है। तो जो नए के नया धर्म खंड है, भारत वो सतो प्रधान पहले होता है, फिर वो भारत सतो बनता है, रजो बनता है, तमो, उनको भी पास करना है। हर धर्म चार अवस्थाओं से जरूर पास होता है। जैसे झाड़ में होता है ना, दुनिया भी झाड़ होते हैं, चार अवस्थाओं से पसार होते हैं। ये ही षष्ठ रूपी वृक्ष है, तो देखो पहले पहले वाले झाड़ के जो पत्ते होते हैं वो नीचे गिरते जाते हैं, उनके ऊपर में दूसरा होता जाता है, फिर दूसरा होता जाता है, नीचे वाला तो नीचे में ही रहेगा ना। तो जो ऊपर में चले जाते हैं वहां की जाड़ बड़ा हो जाता है, तो वो नया नया तुम देखते हो ना, जाड़ में ऊपर नई नई टालियां कैसे निकलती है, कितनी फ्रेश सुंदर दिखाई देती है। जभी भी जब कोई भी झाड़ होगा, आम का झाड़ भले पुराना भी होगा, तो जब बरसात के बाद देखेंगे तो ऊपर में पत्ते उनके बहुत सारे हो जाएंगे और छोटे छोटे भी निकलते रहेंगे, पीछे पीछे उनमें बूर निकलती है। अब इसमें बूर तो यही, वो फल ही यही निकलते हैं, बूर तो कोई काम का नहीं होता है, फल निकलते हैं वो काम के होते हैं। तो अभी ऐसे ही है, ये झाड़ बहुत छोटा है, अभी नया झाड़ है। तुम देखा ना आम का झाड़ लगाया यहां तो कितना सड़ गया, बाकी जाकर के चार झाड़ बचे, शायद पांच होंगे, बाकी सारे सड़ गए। क्योंकि उनको तूफान लगा और उनकी परवरिश पूरी नहीं हुई। तो तुम भी अपनी परवरिश पूरी नहीं करते हो, ये विद्यालय है ना, बाप का विद्यालय, विश्वविद्यालय कहो, क्योंकि विश्व की सभी आत्माएं यहां पढ़ती है। ये आत्मा की पढ़ाई, इसका नाम ही आध्यात्मिक विद्यालय। अधि माने अंदर, आत्मिक माने आत्मा के अंदर, आत्मा के अंदर की बात सिवाय परमात्मा की और कौन बताएगा। दुनिया में कोई ऐसा आध्यात्मिक विद्यालय हो सकता है क्या? हो ही नहीं सकता। तो देखो ये मनुष्य रूपी झाड़ है, जिसको गीता ने भी बताया, ऊर्धम मूलम मदशाखा अश्वत्थम आहुरव्ययम्, ये विनाशी झाड़ है, इसका कभी विनाश नहीं होता है। तो बाप आकर बताते हैं ना, मनुष्य से तुमको देवता बनना है, और कहा भी गाया भी जाता है, मानुष से देवता ये करतन लागीगा, क्या ऐसे तो नहीं कहा जाता, जानवर से देवता की करतन लागीगा, कीड़े मकोड़ों से की करतन लागीगा, या राक्षसों से की करतन लागीगा, नहीं, मनुष्य से। मनुष्य किनको कहा जाता है? जो मनन चिंतन मंथन करते हैं, मन का उपयोग करते हैं, उनको मनुष्य कहा जाता है। तो मनुष्य आत्माओं का बाप में सुप्रीम सोल बाप आते हैं। बुरी आत्मा है ना, जैसे सभी मनुष्य सभी प्राणी मात्र आत्मा है, ज्योति बिंदु है, बिंदु बिंदु आत्माओं का सबका बाप ज्योति बिंदु शिव सुप्रीम सोल, उसका कोई बाप नहीं, परंतु वो आत्माओं का बाप है, मनुष्यों का बाप नहीं। उसको मन है ही नहीं, वो मन चिंतन मंथन करता ही नहीं, उसको क्या दरकार, वो तो कृतदर्शी है, तीनों कालों को जानने वाला है। तो उसमें प्रवेश करता है जो इस दुनिया में सबसे जास्ती मन चिंतन मंथन करने में परफेक्ट होता है। शास्त्रों ने उसका नाम लिखा है मनु, नंबर वार मनु हुए। तो बाप आकर बताते हैं ना मनुष्य के देवता की करतन लागी बार, मनुष्यों को देवता बनाता हूं, बाकी जानवर जिनकी बुद्धि चलती ही नहीं, मन चलता ही नहीं, मन को कंट्रोल करने के प्रयत्न ही नहीं करते, तो तुम देखते हो कि पूरा देवता नहीं बन सकते। थर्ड ग्रेड के फोर्थ ग्रेड के देवता बनते हैं, कहलाने में तो देवता रहेगा ना। पहले जन्म में देवता कहेंगे कि सुख देते हैं, कुछ न कुछ देते हैं, लेने की इच्छा नहीं करते, लेने के नाम पर सभी धर्म पिताओं ने दुख ही भोगा। अपने फॉलोअर्स को दिया है ना, तो देवी देवता धर्म तो वही है ना जो सुख देता है, उसे ही कहेंगे ना बच्चे। और ये तो समझ की बात है कि बरोबर बादशाही स्थापन होती है, उसमें जरूर होगा, परंतु ये समझ करके ये होगा, अच्छा हम कोई थर्ड क्लास बने, हम ये तो बेसमझी हो गई, थर्ड क्लास देवता क्यों बने, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास तो बिल्कुल अच्छा है। परंतु ये माया से नहीं लड़ सकते हैं, ये माया बेटी से लड़ाई लड़ने में फेल हो जाते हैं। माया बेटी कहते हैं ना, बेटी है तो कन्या हुई ना, कन्या में प्यारिटी ज्यादा दिखाई देती है, तो बहुत आकर्षण करती है, तो बेचारे लड़ नहीं सकते, फेल हो जाते हैं। फेल की तो बात तुम जानते हो, बहुत यहां चिट्ठी आती है, बोलते हैं हम फेल हो गए बाबा, हम गटर में गिर गए बाबा, हम फेल हो गए, गटर में गिर गए, हाँ मुंह तो पड़ी थी बन गए, तो फेल हो गए। बाप आए हैं 21 जन्म के लिए मूत पलीती से बचाने के लिए, वहां मूत पलीती होते ही नहीं, मूत पलीती तो होते ही है द्वैतवादी दैत्यों की दुनिया में, जहां देह अभिमानियों का धर्मखंड शुरू हो जाता है, वो तो भ्रष्ट इंद्रियों से ही आसन करते हैं, तो मूत पलीती होते रहते हैं। तुम बच्चे तो देवता बनने वाले हो, देव आत्माएं हो, ज्ञान इंद्रियों से सुख लेते हो, ज्ञान इंद्रियों से सृष्टि की पैदाइश करते हो, ज्ञान इंद्रियों और भ्रष्ट इंद्रियों में अंतर हो गया ना, तो वो तो फेल हो जाते हैं, क्योंकि जन्म जन्मांतर भ्रष्ट इंद्रियों का सुख लेते रहे। नहीं तो ऐसे कभी किसको चिट्ठी कोई लिखते हैं क्या, कोई को तो बहुत डर लगता है, वो ख्याल करते हैं लिख देते हैं बाबा हम फेल हो गए, अरे ऐसे बार बार लिखते रहेंगे हम फेल हो गए फेल हो गए, उसे क्या होगा। तो बाबा कहते हैं फेल हो गए तो तुम मूत पलीती कपड़े हो गए, तुम्हारा शरीर रूपी कपड़ा गंदा हो गया, तुम्हारी शक्ति अच्छी होगी, अभी मूत पलीती कपड़े को कौन हाथ लगाएगा, बंगलों का काम क्या होता है, मूत पलीती को साफ करना, नहीं वो तो ठीक नहीं है मूत पलीती को हाथ लगाना, क्योंकि अभी तुम जानते हो कि मूत पलीती कपड़ा वो बाप को गोद में ले रहे। अरे ये तो सुप्रीम बाप है ना, उनको गोद में कैसे लेंगे, ये तो आत्माओं का बाप है ना, ये तो इवर प्योर सदैव रहने वाला है। इस दुनिया में चाहे सत्यु चले त्रेता चले द्वापर कोई भी सीन हो कलयुग हो, वो तो सदा परम धाम वासी है, पवित्र धाम वासी है, वो कैसे मूत पलीती को हाथ लगाएगा। हाँ मूत पलीती बच्चे उस सुप्रीम सोल बाप को सहज सहज निरंतर याद करें तो पवित्र बने, शरीर पवित्र बने, काया कंचन बने, तो फिर उनको गोद मिलेगी। उनमें भी कोई फर्स्ट क्लास बच्चा होगा जिसमें गोद में जिसको गोद में लेकर पिलाएंगे। आजकल चित्र निकले हैं ना, एक बुढ़ा बाबा बैठा हुआ है, मस्तक में चंद्रमा, गले में सांप, उसकी गोद में कृष्ण बच्चा बैठा हुआ है। बनाने वालों ने चित्र बनाई दिया, चित्र बनाने वाले तो देह विमानी है ना, उन्होंने तो देह हरि बाप दिखाई दिया और कृष्ण बच्चा बच्चा बुद्धि दिखाई दिए। ये भी उनकी कवियों जैसी भावना है, पूरा तो नहीं समझा कि बुद्धि में सुप्रीम सोल बाप प्रवेश करता है, जो कभी देह का जन्म लेता ही नहीं, वो तो अजन्मा है, वो देह में प्रवेश करता है तो भी स्वस्थिति में स्थित रहता है। तो वो भूत पलीती कपड़ों को कैसे बुद्ध रूपी हाथ लगाएगा, वो तो अपने कृष्ण बच्चे को ही हाथ लगाएगा ना। वो भी कृष्ण बच्चा सतयुग का नहीं, सतयुग है पहला सीन, उससे भी पहले रिहर्सल का टाइम है। पुरुषोत्तम संगम युग, पुरुष माने आत्माए है, उन आत्माओं में जो अव्वल नंबर आत्मा है संगम युगी कृष्ण, जिसके तन में वो अधूरा चंद्रमा कृष्ण चंद्र की आत्मा सतयुग का प्रवेश करता है, जो मस्तक पर दिखाया जाता है, वो बच्चा है। जगत पिता जगदम्बा का बच्चा है। तो वो बच्चा तो सतयुग में जाके जन्म लेता है, उस बच्चे को जन्म देने वाला उस प्रिंस को जन्म देने वाला कोई प्रिंस का बाप होगा ना, तो वो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप ऐसा है जो स्वर्ग का बीज रचयिता है, और द्वापर युग से जब द्वापर शुरू हो जाता है तो द्वैतवादी दुनिया का भी रचयिता बाप है, और द्वैतवादी दुनिया का जब अंत होता है तो वहां 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं का बाप साबित होता है। उस बाप को तो सब बच्चों को हाथ लगाना पड़े, तो बताया कि सुप्रीम सोल बाप मूर्ख पलीती बच्चों को कैसे दो हाथ लगाएगा? नहीं, वो तो ठीक ही नहीं है, वो तो एवर प्योर है, सदा काल एवर प्योर। इस दुनिया में जो भूत भविष्य वर्तमान होता है, अर्थात चार युगों में, वो तो परम धाम में रहकर ही पवित्र है। इस सृष्टि पर जब कलयुग के अंत में आता है तो भी अपवित्र में प्रवेश करके पवित्र ही रहता है, वो कैसे बुद्ध रूपी हाथ लगाएगा? क्योंकि अभी तुम जानते हो कि मूत पलीती कपड़ वो बाप उनको गोद में कैसे लेंगे। तो जिस तरह में प्रवेश करते हैं वो भी तो मूत पलीती बच्चों का बाप है, तो उसमें प्रवेश करके तब तक उसमें प्रत्यक्ष नहीं हो सकते प्रैक्टिकली, जब तक वो सुप्रीम सोल बाप की याद में रह करके कंप्लीट निर्विकारी न बने, पवित्र न बने। बाप आते हैं सुप्रीम सोल, जब भूत पलीती से बच्चे साफ शुद्ध हो जाते हैं तभी तो गोद में भी ले सकते हैं। तो मां का काम है सफाई करना, बड़े के बड़ी माता है जगदम्बा, सारे जगत की अम्मा, उसके भी दो रूप हैं, एक आत्मिक रूप जिसे लक्ष्मी कहा जाता है महागौरी, और एक है दैविक रूप जो मूत पलीती भी बनती है महाकाली। तो ऐसे मूत पलीती कर्म करने पड़ते हैं ना। तो बाप मूत पलीती बच्चे जब साफ शुद्ध हो जाते हैं तभी वो गोद में ले सकते हैं। इसलिए चित्र बताते हैं कि बुड्ढे की गोद में बच्चा कृष्ण बैठा हुआ है। ये चित्र पहले नहीं दिखाते थे, अभी आजकल ये चित्र बने हैं, क्योंकि संगम युग चल रहा है ना, उस संगम युग में वो बच्चा पवित्र होने की कगार पर है, इसलिए वो भी दिख रहे। अभी कायदे बाबा ने बंद कर दिया है, क्योंकि सबको गोद में नहीं लेते, बोलते हैं नहीं, वहां जाकर के झोपड़ी में एक एक से पूछ करके सब समाचार लेते हैं, तो उस हिसाब से ये गोद लेते हैं। गोद भी हर किस्म की होती है, समझा ना, वो जैसे जैसे अवस्था होगी उनकी जैसी अवस्था होगी, उस समय में ऐसे ऐसे बाप का प्यार होगा। देखो अंदर में एक और बाहर में दूसरी होती है, अंदर में माया बेटी बैठी हुई है और बाहर में दिखाती है मैं बच्ची बन के बाप की गोद में आई हूं। लग तो दिखाने के लिए प्यार भी करेंगे और अंदर में बोलेंगे ये तो ऐसी है, बाकी अच्छा बच्चा होगा तो कहेंगे ये तो बहुत अच्छा है, मीठा बच्चा है, सबसे बोले ये तो इसमें तो कोई खामी नहीं है, कोई तो कहेंगे इसमें तो दम ही नहीं है, एकदम ये तो बुद्धू है, कोई भी समझ करके करना नहीं जानते हैं, ये अच्छे बच्चे हैं। ये करते हैं ये नहीं करते हैं। तो ख्याल तो रहता है ना सभी। तो जैसा बच्चा वैसी गुरु। ये तो कोई को भी अज्ञानी को भी बाप होगा तो कोई अच्छा बच्चा होगा बिल्कुल वो कमाने वाला होगा विलायत से बहुत पैसा लेकर के आया हुआ है तो बड़े प्रेम से मिलेंगे। और कोई बच्चा होगा यहाँ गजों में सर बिकते होंगे यहाँ वहां तो उनको इतनी खुशी नहीं होगी उनको इतनी खुशी से लेंगे ही नहीं। बच्चे तो बच्चे ही है ना तो उनके उनको इतनी खुशी से नहीं लेंगे बोलेंगे ये गाजरी बाजरी है। ये बाबा भी जानते हैं अपनी राजधानी में भी तो कोई राजा बनेगा कोई गाजरी बाजरी बनेगा। फिर उनको किस दृष्टि से देखेंगे या क्या करेंगे। दोनों बाप दादे हैं ना ये मनुष्य सृष्टि का बाप है जिसमें प्रवेश किया है मुकर्रर रूप से और जिसने प्रवेश किया हुआ वो दादे हो गया है इस मनुष्य तन में। दादे का वर्षा तो 500-700 करोड़ को जरूर मिलेगा बाकी बाप अपना वर्षा दे या न दे कोई को दे कोई को न दे। यूं तो बच्चे तो सभी है परंतु फिर भी जब दादा आते हैं पढ़ाने के लिए अच्छी तरह से तो पढ़ना चाहिए ना पढ़ना चाहिए ना बच्चे अच्छी तरह से। तो ये है पढ़ाना और ये है उनको महत्व समझाना। ये आध्यात्मिक विद्यालय की पढ़ाई आत्मा के अंदर की पढ़ाई अधिमान्य आत्मा आध्यात्मिक ये बाप के सिवाय सुप्रीम सोर्स बाप के सिवाय और कोई पढ़ा ही नहीं सकता। बाकी जैसे इस बच्ची के लिए बाबा ने कहा कोई भी धर्म हो तो उनको ये पहले पहले होना चाहिए कि बाप को कहा ही जाता है लिबरेटर। अभी लिबरेटर किसे कहते हैं देखेंगे कहां फंस गया है और गाइड करते हैं। तो लिबरेटर और गाइड कौन है उनका परिचय देना होता है। ये परिचय कौन देता है इस बच्ची को बोला ना परिचय देना है। सारी दुनिया को परिचय देना है परिचय देने वाले मूल कौन है बीज आत्मा और आत्मा शरीर के बगैर काम कर न सके। तो जिनको परिचय देना है उन सबको कह देना चाहिए कि सुप्रीम गॉड फादर क्योंकि मूल बात यही है ना कि सिर्फ गॉड फादर और सुप्रीम गॉड फादर। सुप्रीम गॉड फादर जब आते हैं वो समय जब उनका होता है ड्रामा प्लान अनुसार आते हैं तो सबको लिबरेट करेंगे। सृष्टि की आदि सत्व प्रधान सत्युग में थोड़े ही करेंगे न त्रेता में करेंगे न द्वापर में रजु प्रधान में करेंगे। जब एकदम ये सच रूपी मकान तमो प्रधान बन जाए तो सबको लिबरेट करेंगे इस अशांति की दुनिया से छुड़ाएंगे क्योंकि हेवन में तो कोई भी फंसा हुआ नहीं होता है। ये तो विन किया हुआ है ना राक्षसी दुनिया दुखदाई दुनिया के ऊपर विन किया हुआ है ना तो वहां कोई फंसा हुआ उनकी बात ही नहीं। सब स्वतंत्र होते हैं आत्मा है ही स्वतंत्र। जो पुकारते हो हमको छुड़ाओ हे पतित पावन आओ अरे किससे छुड़ा है? हेवन में तो जो वो शैतान है वो तो होता ही नहीं है। शैतान कौन?
बोले दस सिरों वाला रावण, तमो प्रधान बने हुए सिर।
शैतान होते हैं हेल में, जहां हेल माने
बाहर,
जहां काम आदमी जलती है, तो जरूर वो पुकारते हैं हमको शैतान से छुड़ा करके घर में ले चलो, शांति धाम में ले चलो। हे शांति दाता, शांति देवा, हमको अपने घर में ले चलो। तो शांति देवा देवता है, वो सांप को छुड़ाए के ले जाता है, परंतु उसे पहले अपने अंदर शांति धाम क्रिएट करना पड़े, तब ही तो शांति देवा सबको शांति देवेगा ना। देवा है कि लेवा है? देवा है देने वाला, परंतु देवताओं को देवता बनाने वाला कौन है? वो है सुप्रीम सोल गॉड फादर। वो देव नहीं है, वो देवता बनाने वाला है। वो तो आकर के कहते हैं कि तुमको अगर घर चलना है तो तुम देखो पतित है, प्योरिटी नहीं है तुम्हारे में, और तुम्हारा जन्म भी इम्प्योरिटी से हुआ है, मूत पलीती से तुम्हारा जन्म हुआ है। अगर तुम प्योर बन जाएंगे, मुझे याद कर करके प्योर बनेंगे, गॉड फादर ऐसा कहते हैं, मुझे याद करो, तो जो इम्प्योरिटी तुम्हारे में आ गई है, पतित हो गए हो, इम्प्योर हो गए हो, मुझे याद करो तो तुम प्योर हो जाएंगे। हम कहते हैं गॉड फादर, कहते हैं गॉड फादर, मुख से कहेंगे कि बिना मुख से कहेंगे? मुख से कहते हैं। तो मुख से जो बोलने वाला है वो कौन है? गॉड फादर। गॉड फादर में और सुप्रीम गॉड फादर में अंतर नहीं है। गॉड फादर गॉड बनकर के बैठने वाले इस संसार में नंबर वार बहुत हुए। क्रिश्चियंस इस दुनिया में क्राइस्ट को भी गॉड मानते हैं, बाप मानते हैं, गॉड फादर। मुसलमान मोहम्मद को गॉड फादर मानते हैं, सन्यासी शंकराचार्य को गॉड फादर, भगवान शंकराचार्य, सिख लोग गुरु नानक को सदगुरु मानते हैं। सत माने सच्चा। अरे सच्चा गुरु तो एक निराकार होगा ना, वो साकार कैसे हो गया? तो जो साकार बनकर के बैठने वाले हैं वो नंबर वार धर्म पिताएं हैं, जो भारतीय ग्रंथों में शास्त्रों में दशावतार के रूप में गए हुए हैं। ये है दस गॉड फादर्स अपनी अपनी फॉलोअर्स प्रजा के, परंतु सुप्रीम गॉड फादर एक है, उसको अपना शरीर नहीं है, वो सदैव निराकार है। इस सृष्टि में साकार मुकर्र रथ में आता भी है तो भी निराकार इस चीज में रहता है। तो वो कहते हैं तुम प्योर भी रहो और मेरे को याद करो। किस तन में याद करो? जिस तन में मैं मुकर्रर रूप से आया हुआ हूं उस तन को पहचानो और याद करो। उस तन के द्वारा, साकार के द्वारा निराकार को याद करेंगे, साकार में निराकार को याद करेंगे तो याद सहज हो जाएगी। सिर्फ निराकार को याद करना सबके बस की बात नहीं है, वो सिर्फ
ग्रेट फादर्स
की बात है। चाहे वो अव्वल नंबर का
ग्रेट फादर
मनुष्य सृष्टि का बाप हो, चाहे वो किसी भी धर्म का धर्म पिता हो, वो ही निराकार को याद कर सकते हैं। अथवा उनके जो बीज हैं एकदम आदि के बीज जो संगम युग में ऐसी स्टेज तैयार करते हैं जिन्हें दस धर्म के बीज कहा जा सकता है, वो अविनाशी बीज है। और संगम युगी स्वर्णिम स्वर्ग से ही अपना पाठ बजाना शुरू करते हैं। तो उन सब का बाप सुप्रीम सोल, वो कहते हैं प्योर भी रहो और मेरे को याद करो। अभी हर एक को ये कह सकती है, ये कौन, ये बच्ची कौन बच्ची कह सकती है, ये बच्ची कह सकती है जो सारे जगत की मां बाप कही जाती है। सारा जगत में देवताएं भी आ गई, दैत्य भी आ गए, राक्षस भी आ गए, वो सारे याद करें उस गॉड फादर को जिसका परिचय वो मां देती है। ये मां में भी दो रूप हैं, एक दैहिक रूप जगदम्बा जिसे लोग जानते हैं साकार रूप में, और उसमें एक है आत्मिक स्वरूप जो मूल है मुख्य है जिसे कहा जाता है पार्वती लक्ष्मी, सारे संसार को पार लगाने वाली। तो वो हर एक को ये कह सकती है क्योंकि जो डायरेक्शन देते हो तुम, जो गाइड करते हो, तो बाप के तरफ में इशारा करती हो कि एक को याद करो, मुझे भी याद न करो। मेरे दो रूप हैं, एक आत्मिक रूप और एक दैहिक रूप। आत्मिक रूप में मैं हूं सदा पवित्र रहने वाली, एक को याद करने वाले, एक के साथ संसर्ग संपर्क में रहने वाले, देह तो अनेकों के साथ संबंध में आती है, वो नंबर आठ है देहधारी आत्मा। तो बोला उस एवर प्योर बाप को याद करो जो कभी भी आत्मा पवित्र नहीं बनती, वो आत्माओं का बाप है और वो आत्मलोक से आते हैं, बस इनके सिवाय और कोई भी इनवर प्योर नहीं रह सकता। इनके कैसे डबल क्यों कर दिया, क्योंकि जिस तन में आते हैं उसको भी साकार रूप में इनवर प्योर बनाते हैं। साकार शरीर धारण करने वाली आत्माओं में जिस तन में प्रवेश किया है वो ही इनवर प्योर है, उसके अलावा और कोई इनवर प्योर नहीं है। इसलिए उसको भारतीय सभ्यता में अमोघ वीर कहा जाता है। ऐसी स्टेज धारण करता है कि उसकी शक्ति कभी छिन्न होती ही नहीं। जब तक संगम युग है, जब तक नई सृष्टि नहीं बनी है, तब तक इनकी यही स्टेज रहती है। इनके सिवाय किनके सिवाय, इनके माने दो कम से कम, कौन दो, एक सुप्रीम सोल और एक सुप्रीम सोल जिसमें प्रवेश करता है मुकर्रर रथधारी में, वो सोल मनुष्य सृष्टि का बाप, बस इनके सिवाय और कोई भी वर्ग प्योर नहीं रह सकते हैं। क्या कोई कहे हम भी उड़ते और बढ़ते दिखाएंगे तो नंबर वार हो जाएंगे, अव्वल नंबर नहीं हो सकते। बाकी जो आते हैं सो प्योर से इम्प्योर जरूर बनते हैं कि पुनर्जन्म जरूर लेते हैं। मनुष्य जो भी आते हैं पुनर्जन्म तो लेते हैं। तो इस समय में सभी हैं जो चिल्लाते रहते हैं हम पतित हो गए हैं, सभी में कौन कौन आ गए, चाहे देव आत्माएं हो चाहे आसुरी आत्माएं हो चाहे मनुष्य आत्माएं हो, सब पतित हो गए। 500-700 करोड़ जो भी परमपिता सुप्रीम सूर्य के बच्चे हैं सब चिल्लाते रहते हैं पतित हो गए। इसलिए मैं राय देता हूं ऐसे बताओ क्या बोलना है इस बच्चे को, मैं राय देती हूँ एडवाइस देती हूँ। देखो इतनी छोटी बच्ची पर एडवाइस देती है ना, क्या कितनी छोटी बच्ची, नाम ही रख दिया ब्रह्मा कुमारियों ने अंतिम वाला, शरीर से छोटी है ना। पर है तो बड़ी, नाम ही है जगदम्बा, शरीर का नाम है कि आत्मा का नाम है, लोग तो शरीर को ही देखते हैं। जो आत्मा की स्थिति वाले बच्चे हैं वो आत्मा को पहचानते हैं कि ये है पार्वती पार लगाने वाली, बाकी देह तो डुबोने वाली है या पार लगाने वाली है। तो इतनी छोटी बच्ची पर एडवाइस देती है ना, क्या एडवाइस देती है, एक सुप्रीम सोल बाप को याद करो निरंतर याद करोगे तो अव्वल नंबर देव आत्मा 16 कला संपूर्ण बन जाओगे, और तीखा याद करोगे सारा जीवन शरीर छोड़ते समय तक भी याद करोगे तो स्वर्णिम संगम युग में कलातीत आत्मा बन जाओगे। अगर अभी तुम सीट होम में जाने हैं देखते हो कि मौत सामने खड़ा है विनाश के लिए, क्योंकि ये जो एटमिक बॉम्ब्स हैं मिसाइल्स हैं, अच्छा तुम जानते हो कि ये है पुरानी दुनिया की बात, पुरानी दुनिया की हिंद है ना, समझा ना, क्योंकि ये जो कुछ भी अच्छा देखते हैं ये पाम पेंड सो माया का है, माया ये पाम पेंड सो का अर्थ ही है मां मने संस्कृत में नहीं आया मने आया, ये पाम पेंड सो ना आया होता तो अच्छा था, इस पाम पेंड सो में सारी दुनिया फंस जाती है, देव आत्माएं भी इसी श्रेष्ठ आत्माएं वो भी फंस जाती है। ये कहते हैं ये माया है माया का पाम, ये कोई ईश्वर का पाम नहीं है, वो तो सचिव में पाम होता है ईश्वर का, ये है कलयुग का पाम, कल है कलेश का युग अशांति का युग, तो वो कलयुग की पाम इस समय में क्यों है कि खेचे हैं अपन को आत्मा को खींचते चले जाए, सच को भुलाए दे दें स्वर्ग को भुलाए दे दें, नहीं तो मुसलमान भी मानते तो हैं जन्नत को, क्रिश्चियंस भी मानते तो हैं हेवनली गॉड फादर को, कहते कि लॉर्ड कृष्ण का राज्य था, राजी था। इसलिए सभी कहते हैं मनुष्य कि अभी तो स्वर्ग है, जब स्वर्ग था तो स्वर्ग था, लेकिन अभी ये एरोप्लेन वगैरह देखते हैं, ये बत्तियां निकली हुई हैं, ये चकाचक भकाभक देखते हैं तो सोचते हैं अभी यही स्वर्ग है। आगे कोई थोड़े ही थे, नहीं ये तो बत्तियां अभी निकली हुई है, तो अभी को कहा जाता है ये है माया का पंप पिछाड़ी का, थोड़े समय का है फिर एटमिक बम बन चुके हैं। माया सबको भरमाती है, तो इसका ही नाटक बना हुआ है फॉल ऑफ पंपिया पंपिया। ओम शांति।